प्रिय श्रोता नमस्कार। बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर हम एक बार फिर से आपकी सेवा में उपस्थित हैं और हमें विश्वास है कि आप सब आज का कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से श्रेष्ठ गीत नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं, जिसका मुख्य विषय है प्रेम। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले प्रस्तुत है एक मधुर संगीत रचना।
यीशु से डरती है बदरूह सारी, यीशु से डरती है हर बीमारी, यीशु से डरती है बदरूह सारी, यीशु से डरती है हर बीमारी। यीशु के प्यारो दुख से नहारो, यीशु को सच्चे मन से पुकारो। यीशु का वादा सच्चा है,
सच्चा है,
जो भी वो कहता है होता है,
होता है।
यीशु यहोवा रफा है, यीशु खुदा का है बेटा। पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के वचन देख लो, पढ़ के वचन देख लो, पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के कलाम देख लो। कहा यीशु ने लाज़र,
लाज़र
आ निकल कब्र से बाहर, चार दिनों का वो मुर्दा पल में हो गया जिंदा।
पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के कलाम देख लो,
पढ़ के बाइबल देख लो, पढ़ के बाइबल देख लो,
पढ़ के कलाम देख लो,
पढ़ के कलाम देख लो।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए अपने परिवार और मित्रों के साथ बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम इन दिनों बाइबल में से श्रेष्ठ गीत नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक में हम परमेश्वर के प्रेम और कलीसिया के उन अनुभवों को अर्थात तुलनात्मक प्रेम को देख रहे हैं। तो इससे पहले कि आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे सामर्थ्य और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम आपके वचन का अध्ययन करें। आज जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए ताकि आज जो कुछ भी हम सुनते हैं सीख सकें, समझ सकें, अपने जीवन में ग्रहण कर सकें। हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहन के लिए जो अपने जीवन में निराश हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं या किसी प्रकार के दबाव में हैं, आप उनकी सहायता करें ताकि हर एक जीवन आप में बढ़ने पाए। धन्यवाद देते हैं हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, हम देख रहे थे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। देखते हैं वचन में लिखा है कि तू सुंदरी है। वधू द्वारा वर की प्रशंसा के बाद वर क्या कहता है, इसको हम देखेंगे। श्रेष्ठ गीत 1 अध्याय उसके 15 पद में लिखा है, तू सुंदरी है, हे मेरी प्रिय तू सुंदरी है, तेरी आंखें कबूतरी की सी हैं। अगले पद में वधू की तत्कालिक प्रतिक्रिया है, हे मेरे प्रिय तू सुंदर और मनभावन है। वह तो अपने को धूप में झुलसी सांवली कहती है, परंतु यह प्रेमी उससे कहता है कि तू सुंदरी है। मेरे मित्रों, हम मसीह की वधू ने पाप किया है, आप अपने पाप स्वीकार कर सकते हैं। दानियल की पुस्तक 9 अध्याय के 5 पद में, हम लोगों ने तो पाप, कुटिलता, दुष्टता और बलवा किया है और तेरी आज्ञाओं और नियमों को तोड़ा है। यह प्रत्येक उस व्यक्ति का अंगीकार है जो परमेश्वर की संतान है। परंतु हमारा प्रभु यीशु हमारे लिए विनती करता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय के 6 पद में, वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। यह हमारा महायाजक है जो हमारे लिए विनती करता है। क्योंकि हम मसीह में हैं, इसलिए पिता परमेश्वर हम में कोई अपराध नहीं देखता है। जैसे उसने याकूब के अपराध नहीं देखे, इसराइल की बुराइयों को न देखते हुए विलाम को उन्हें श्राप देने से रोका। परमेश्वर स्वयं उतरकर अपनी प्रजा का न्याय करता था। वह उन्हें पाप करके बचने नहीं देता था, परंतु वह किसी अन्य जाति भविष्यद्वक्ता को उन्हें श्राप देने नहीं देगा। उसने इसराइल को मसीह यीशु में देखा। वह हमें भी आज ऐसे ही देखता है। तू सुंदरी है। उसकी सुंदरता का कारण है कि उसकी आंखें कबूतरी की सी हैं। कबूतर पवित्रता और स्थिरता का प्रतीक है। उसकी आंखें वर पर टिकी हुई हैं। उसकी संपूर्ण सुंदरता वर की सुंदरता का प्रतिबिंब है। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय के 22 पद में यीशु ने कहा, शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा और सुंदरता से भरा होगा। फिर पद 23 में वह कहता है, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। जिसकी आंखों में यदि अन्य कुछ भी मसीह के बराबर है तो उसकी आंखों में सुंदरता नहीं। मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय के 37 पद में प्रभु यीशु स्पष्ट कहता है, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह भी मेरे योग्य नहीं। अतः आपके लिए इस प्रश्न का उत्तर देना अति आवश्यक है, क्या आपकी आंखें यीशु पर लगी हुई हैं? मैं समर्पण के बारे में बहुत कुछ सुनता हूं। सभा में विश्वासी जन अपने समर्पण की चर्चा करते हैं और कहते हैं कि वे मसीह को प्रकट करने की लालसा रखते हैं, परंतु वे आलसी हैं। उनकी सेवा फिसल पट्टी है। समर्पण चर्चा का विषय नहीं है, यह तो प्रकट करने की बात है। यह आपके जीवन से प्रकट होगा। यदि आपकी आंखें प्रभु पर लगी हुई हैं, तो उसकी सुंदरता आप में से प्रकट होगी। वर वधु से कहता है कि वह अनुपम सुंदरी है और वह भी तुरंत उसे ऐसा ही उत्तर देती है। तो आइए हम पढ़ें श्रेष्ठ गीत 1 अध्याय उसके 16 और 17 पद में लिखा है, हे मेरे प्रिय तू सुंदर और मनभावना है, और हमारा बिछौना भी हरा है। हमारे घर के धरन देवदार हैं और हमारी छत की कड़ियां सनावर हैं। यहां पर वर उनके लिए सुंदर है जो उस पर विश्वास करते हैं। वह पूर्ण रूप से आकर्षक है। संत अगस्तीन ने लिखा, वह स्वर्ग में सुंदर है, पृथ्वी पर सुंदर है, कुंवारियों के गर्भ में सुंदर है। वह एक पवित्र बालक था, वह अपने माता पिता की गोद में सुंदर था, वह कोड़े खाने में सुंदर था, अपनी जान देने में सुंदर, फिर जी उठने में भी सुंदर, क्रूस पर सुंदर, कब्र में सुंदर। परमेश्वर के महान संत अगस्तीन ने प्रभु यीशु का वर्णन इस प्रकार से किया था, मन भावन। यह शब्द मंदिर के मधुर संगीत का वर्णन करता है। भजन संहिता 135 उसके 3 पद में वह कहता है, यह की स्तुति करो क्योंकि यह भला है, उसके नाम के भजन गाओ क्योंकि यह मनोहर है। प्रभु यीशु मनोहर है, वह आकर्षक है, तो आप यीशु से दूर भागना क्यों चाहते हैं? वह तो ऐसा महान है। यह शब्द अपने घनिष्ठ मित्र के लिए भी प्रयोग किया जाता था, जैसा दाऊद ने योनातान से कहा था, दूसरे शामिल की पुस्तक 1 अध्याय उसके 26 पद में, तू मुझे बहुत मन भाव जान पड़ता है। योनातान से भी कोई बड़ा है तो उसके बारे में हम क्या कहेंगे? क्या आप कह सकते हैं कि यीशु आपके लिए मन भाव है? उसकी संगति मधुर है, वही हमें विश्राम प्रदान कर सकता है। क्या आप उससे संतुष्ट हैं? पिता परमेश्वर उससे संतुष्ट था। लिखा है, हे मेरे प्रिय, तू सुंदर और मन भावन है, और हमारा बिछौना भी हरा है। उनके विवाहोत्सव में उनका तख्त फूलों और पत्तियों से सजाया जाता था। यदि पृष्ठभूमि में यरूशलेम है तो बिछौना हरा होना यही है। इसका संदर्भ उनके मिलन के प्रथम स्थान से भी हो सकता है, जहां हरी हरी घास थी, जहां शायद वे बैठकर बातें करते थे जब उनकी भेड़ें चर रही होती थी। वह संबंध बनाने का स्थान था। यहां पर हमें दाऊद के भजन 23 स्मरण आते हैं, वह मुझे हरी हरी घास में लेटाता है, हरी चारागाह भेड़ के संतोष का स्थान है, वह खाकर तृप्त होती है। यह प्रभु यीशु के निमंत्रण का उत्तर है। मेरे प्रियो, वह सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों को बुलाता है कि वे विश्राम पाएं। यह हरी चारागाह हमारे लिए है। यदि हम अर्थात आप थकित और बोझिल हैं तो उसमें विश्राम पा सकते हैं। ए मोडी स्टुअर्ड ने कहा, बोझ से दबे और निराश यीशु को छोड़ दूर शांति खोजते, जैसे रेगिस्तान में हाजिरा, मशक की अंतिम बूंद भी समाप्त है और तू मरने के लिए लेट गया, परंतु अपने कान खोल तो सुनेगा, मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अपनी आंखें खोल तो तुझे कुआं दिखेगा और हरा घास का मैदान दिखाई देगा, और आप संपूर्ण मन से उसे उत्तर देंगे, तू सुंदर और मन भावन है, और हमारा बिछौना भी हरा है। यह कैसा सुंदर दृश्य है। मेरे मित्रों, आपको स्मरण है वह कहां बैठा था? सबसे पहले वह चरनी में आया था और उसका अंतिम स्थान यूसुफ की कब्र था। वह वहां इसलिए गया था कि हम उसके साथ हरी चारागाहों में बैठें। मित्रों, यहां पर अध्याय 1 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 2 से जारी रखेंगे। यहां पर देखेंगे शारोन देश का गुलाब। श्रेष्ठ गीत 2 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, मैं शारोन देश का गुलाब और तराइयों में का सोसन फूल हूं। आधुनिक विचारकों का कहना है कि यह वधु की वाणी है। मैं भी पहले यही सोचता था कि वह उस देश के विनम्र फूलों के साथ अपनी तुलना कर रही है, परंतु अब मैं नहीं मानता कि यह वधु की वाणी है, यह वर की वाणी है। यदि यह वधु की वाणी मानी जाए तो वह वास्तव में प्रभु यीशु मसीह और उसके प्रतिबिंबित सौंदर्य का विवरण है। मैं शारोन देश का गुलाब और तराइयों में का सोसन फूल हूं। कोई भी मानव पुत्र ऐसा नहीं कह सकता है। अतः मैं यह मानता हूं कि यह वधु नहीं प्रभु यीशु के शब्द हैं। अनेक विचारकों ने इसे राजा के शब्द माने हैं, परंतु बाइबल के प्राचीन अनुवादों में इन्हें प्रभु यीशु के शब्द माना गया है, क्योंकि वही वर है। कलीसियाई पितरों में से अनेकों ने इन्हें प्रभु यीशु के शब्द कहा है। मेरे मित्रों, ये शब्द प्रभु यीशु का वर्णन करते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसके 29 पद में यीशु ने कहा, मैं नम्र और मन में दीन हूँ। यदि ये शब्द हम लोगों के मुंह में हो या जिब्राइल स्वर्गदूत के मुंह में हो तो वह दीनता नहीं है, वह घमंड है। यीशु के मुंह के ये शब्द वास्तविक दीनता का प्रकटीकरण है, क्योंकि वह स्वर्ग की महिमा त्याग कर आया था और स्वर्ग के नीचे की प्रत्येक वस्तु उसके लिए दीनहीन दशा थी। वह कहता है, मैं शारोन देश का गुलाब और तराइयों में का शोषण फूल हूँ। ये दो फूल अति रोचक फूल हैं। मेरे विचार में गुलाब सब फूलों का राजा है और शारोन के गुलाब असामान्य रूप से सुंदर हैं। शारोन की घाटी समुद्री प्रदेश की तलहटी या तटवर्ती घाटी है जो यापा से हाइफा तक फैली हुई है। मैंने इसको कई स्थानों पर तस्वीरों में देखा है कि वह हर ऋतु में एक रमणीय स्थल है। आप वहां अनेक प्रकार के फूल देखेंगे। वहां अफीम की खेती भी आप देखेंगे, क्योंकि अफीम की खेती भी वहां होती है जिसके फूल अति सुंदर होते हैं। संसार का सबसे उत्तम संतरा वहीं उगता है। उस घाटी में गुलाब की बहुतायत है। यह प्रभु का वर्णन करने के लिए एक अति उत्तम फूल है। मेरे विचार में गुलाब में पहले कांटे नहीं थे, आज सबसे सुंदर गुलाब में भी कांटे हैं, जो हमें उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय उसके 18 पद का स्मरण कराता है कि पृथ्वी कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी। यह परमेश्वर का श्राप है। किसी प्राचीन लेखक ने कहा, यदि राजा को फूलों पर विराजमान किया होता तो गुलाब उनका राजा होता, क्योंकि वह पृथ्वी का आभूषण है, पौधों का वैभव, फूलों की आंख, भूमि की सुंदरता। मेरे मित्रों, यह एक अति रोचक बात है कि प्रभु यीशु ने कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 35 पद में, जीवन की रोटी मैं हूं। उसके कहने का अर्थ था कि वह जीवन के लिए अति आवश्यक है। जीवन की रोटी अर्थात रोटी जीवन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। वह हमें जीवित रखती है, तंदुरुस्ती देती है। वह नाश हो रहे पापी का जीवन है। हजारों ने विश्वास में मरणहार हाथ उठाकर इस जीवन की रोटी को ग्रहण किया और जीवन पाया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 1 पद में यीशु कहता है कि सच्ची दाखलता मैं हूं। सच्ची दाखलता होने के कारण वह महिमामय प्रभु का अद्भुत आनंद प्रदान करता है। नीति वचन की पुस्तक 31 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, मदिरा उसको पिलाओ जो मरने पर है, और दाख मधु उदास मन वालों को ही देना। मसीह शराब नहीं, आनंद प्रदान करता है, प्रभु का सच्चा आनंद जिसे हम कहीं और प्राप्त नहीं कर सकते। जब वह कहता है कि वह शारोन का फूल है तो वह स्वयं को आवश्यकता की वस्तु नहीं, प्रशंसा का विषय बता रहा है और मनुष्य की संतान का आनंद प्रकट कर रहा है। वह कैसा अद्भुत मनुष्य था। मेरे प्रियो, हमें उसे निहारने और हमारे विचारों पर आसीन करने की आवश्यकता है। वही है जो सत्य है, निष्ठा है, पवित्रता और सौंदर्य है, जिस पर हमें विचार करना है, जिसे मुझे और आपको स्वीकार करना है, उसके बारे में जानना है। एक दिन वह अपने शिष्यों के साथ खेतों में से होकर के जा रहा था, तब उसने उनका ध्यान आकर्षित करते हुए कहा, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 28 पद में, जंगली सोसनों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं, वे ना तो परिश्रम करते ना काटते हैं। मेरे विचार में आज वह होता तो हमसे कहता, शारोन के गुलाब को देखो, दूसरे शब्दों में उसे निहारो। इब्रानियों के पत्री 3 अध्याय के 1 पद में ऐसा ही एक आमंत्रण है, हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। जी हाँ, यीशु पर ध्यान दो। यदि हम उस पर अपना ध्यान लगाते हैं तो निश्चय ही हम उन स्वर्गीय स्थानों में होंगे जिसे परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए तैयार किया है। हम देखेंगे तराइयों में का शोषण। मैं तराइयों में का शोषण फूल हूं। यह एस्ड्रेलोन की घाटी है जहां बहुत सुंदर फूल लगते हैं। याफा के दक्षिण में समुद्री तटीय प्रदेश में गलील सागर के आसपास यर्दन की तराई में हर जगह सुंदर फूल उगते हैं। तराइयों में का यह शोषण क्या है? यहां प्रश्न यह है कि यह कौन सा फूल है। निश्चय ही यह फूल आयरिस का फूल है जो वहां आज भी इसकी बहुतायत देखी जा सकती है। अतः मेरे विचार में यह आयरिस का विनम्र फूल है। प्रभु यीशु वैभवशाली गुलाब और दीन आयरिस है। मैं शारोन देश का गुलाब और तराइयों में का शोषण फूल हूं। मेरे मित्रों, आइए आज हम उस फूल की महत्वता को समझते हुए अपने जीवन में इसे जगह दें। श्रेष्ठ गीत की पुस्तक 2:2 में लिखा है, जैसे शोषण फूल कटीले पेड़ों के बीच, वैसे ही मेरी प्रिय युवतियों के बीच में है। बोनर ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की है, इस शोषण फूल के पास रेगिस्तान की कटीली झाड़ियां उग रही थी, परंतु शोषण उनमें सबसे ऊपर दिखाई दे रहा था और उन मैले हरे कटीले झाड़ी के पत्तों के ऊपर शोषण के पत्ते दिखाई दे रहे थे। जैसे शोषण कटीले पेड़ों के बीच, वैसे ही मेरी प्रिय युवतियों के बीच में है। युवतियों से अभिप्राय है यरूशलेम की पुत्रियां, उसकी वधु उनके मध्य अलग ही दिखाई दे रही थी। कभी कभी जब आप किसी के प्रिय होते हैं और ऐसे स्थान पर होते हैं जहां पर भीड़ भाड़ है, तो आप अपने प्रिय को दूर से ही भीड़ में पहचान लेते हैं और आप जान जाते हैं कि वह आपका प्रियजन है। मेरे प्रियो, मसीह तराइयों का शोषण है। वह पवित्र और मनभाव है, वह रूपवान है, इसलिए तो उसकी वधु भी शोषण है, क्योंकि वह उसकी सुंदरता की छवि है और मनुष्यों पर उसे प्रकट करती है। आज कलीसिया को यही करना है। हमें इस कटीले संसार में मसीह की सुंदरता को प्रकट करना है। हम आगे देखते हैं सेव का वृक्ष जंगल में। अब वधु अपने वर की तुलना जंगल के वृक्षों से करती है। तो आइए हम पढ़ें श्रेष्ठ गीत 2:3। लिखा है, जैसे सेब का वृक्ष जंगल के वृक्षों के बीच में, वैसे ही मेरा प्रेमी जवानों के बीच में है। मैं उसकी छाया में हर्षित होकर बैठ गई और उसका फल मुझे खाने में मीठा लगा। जंगल के वृक्षों में या उसके बीच में सेब का वृक्ष मसीह का प्रतीक है। आप सोच रहे होंगे कि वह किस वृक्ष की चर्चा कर रही है। सच तो यह है कि उस देश में सेब नहीं उगता है। यदि वे उगा भी लिए तो वे अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि वहां की जलवायु अधिकतर मद्रास के समान है। अतः यह वृक्ष वास्तव में संतरे का पेड़ है। वे सुंदर होते हैं, छाया भी अच्छी होती है, और जब उनमें फूल लगते हैं तो कोई भी जो उसके करीब में है अपने आंगन में बैठकर उनकी सुगंध का आनंद ले सकता है। यही कारण है कि उन्हें विवाहों में काम में लिया जाता था। पका हुआ फल सुंदर दिखता है और स्वास्थ्य के लिए अति लाभदायक है। आज हमें स्वस्थ फल नहीं मिलते, क्योंकि आज अधिकतर रासायनिक खाद का प्रयोग किया जाता है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। शारोन की तराई में संतरे के बगीचे भी हैं। वह वहीं का फल है। उनकी हरियाली अति मन भावन होती है। मेरे प्रियो, आप यहां पर देखिए कि वह कहती है, मैं उसकी छाया में हर्षित होकर बैठ गई और उसका फल मुझे खाने में मीठा लगा। संतरे का वृक्ष, यशाया की पुस्तक 32 अध्याय उसके 2 पद के अनुसार घनी छाया देता है, निर्जल देश में जल के झरने व तप्त भूमि में बड़ी चट्टान की छाया और ताजगी देने वाले फल। मसीह यीशु इस अद्भुत फल की नाई है जो जंगल के अन्य फलहीन वृक्षों के विपरीत है। मेरे मित्रों, यहाँ पर क्या ही अद्भुत चित्रण हमें दिया गया है कि जो मसीह के निकटता में आता है वह छाया पाता है, अर्थात अपने जीवन में शांति और आनंद को प्राप्त करता है। मेरे प्रियो, मैं नहीं जानता कि आज आप किसकी छाया पर बैठे हैं। क्या आप उस सूखे पेड़ की छाया पर बैठे हैं और ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि एक दिन इसमें पत्तियां आएगी और मुझे छाया प्राप्त होगा? शायद उस समय ना आए। आज आपके लिए अवसर है कि हम प्रभु यीशु के पास आ जाएं, अपने जीवन को उसके निकटता में लाएं और उसके उस असीम छाया को अपने जीवन में ग्रहण करें, उस शांति को ग्रहण करें और निश्चय ही आप उसमें आनंदित होने पाएंगे, उस फल का लाभ उठाने पाएंगे, उसके स्वाद को चखने पाएंगे कि वह आपसे कितना प्रेम करता है, वह आपकी कितना चिंता करता है। मेरे प्रियो, आज हमारे अध्ययन का समय यहाँ पर समाप्त होता है और मैं विश्वास करता हूँ कि इस अध्ययन के द्वारा आज आपने फिर से अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु के वचन में बने रहें, उससे प्रेम करें। प्रभु आप सबको आशीष दें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
रूही खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। रूही खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है, छू गया है, छू गया है। यीशु का लहू गया मुझे छू, रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया।